यशाया अध्याय 59, यशाया अध्याय 59 पद 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। प्रभु, जब हम उपवास में पुकारते हैं तब तू हमारी वाणी सुनता क्यों नहीं, तू उसे स्वीकार क्यों नहीं करता है? परंतु यहोवा कहता है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मेरे सुनने में तो कोई समस्या नहीं है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। यदि आपको प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है, दोष हम में है। प्रभु कहता है, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सकूं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो नहीं सुनता। राजा दाऊद ने कहा, भजन संहिता 66 का 18 पद, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। परमेश्वर कहता है, देख, मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सकूं, ना ऐसा बहरा हो गया हूं कि सुन ना सकूं। परंतु आपके पापों ने आपके और परमेश्वर के संबंधों को तोड़ दिया है। पाप आपकी प्रार्थना में बाधा बन जाता है, क्योंकि पाप आपके संबंधों को परमेश्वर से तोड़ देता है और ऐसी स्थिति में प्रार्थना करना अर्थहीन होता है, और यथार्थ में ये अवस्था इससे भी बुरी होती है। ऐसे में प्रार्थना धोखा होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही मार्ग पर नहीं हैं और आपके काम न्यायोचित नहीं है, जिस अवस्था को हम प्रायः ये कहकर अनदेखा कर देते हैं, मैं जानता हूं कि न्यायोचित नहीं, परंतु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, मैं जानता हूं कि ये पाप है, परंतु मैं प्रार्थना कर रहा हूं। एक मिनट रुकिए, आपकी प्रार्थना पूरी अर्थहीन है, आप धोखा खा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो सुनेगा नहीं। आपके पाप ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है, अतः आपका प्रार्थना जीवन आपके लिए धोखा है। आप सोचते हैं, मैं इतना बुरा तो नहीं कि प्रार्थना ना कर पाऊं, परमेश्वर की ये घोषणा है, यशाया अध्याय 49 पद 3, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारे जीभ से कुटिल बातें निकलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी प्रार्थना करने की एक विधि थी, वे अपने हाथों को ऊपर अर्थात यहोवा की ओर उठाते थे, परंतु परमेश्वर ने कहा, तुम हाथ तो मेरी ओर उठाते हो, परंतु वे हत्या के लहू से रंगे हैं, वे अधर्म से रंगे हैं। इस प्रकार प्रार्थना परमेश्वर का अपमान है। यदि मैं रक्त रंजित हाथ परमेश्वर की ओर उठाता हूं जो अधर्म से रंगे हुए हैं, तो ये परमेश्वर का अपमान है, इसलिए परमेश्वर ना सुनेगा, ना ही उसकी ओर ध्यान देगा, यशाया अध्याय 49 पद 4 से लेकर 15 तक। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं, उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं, जो कोई उनके अंडे खाता वो मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ है, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और ना उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वो शांति ना पाएगा। इस कारण न्याय हमसे दूर है और धर्म हमारे समीप ही नहीं आता। हम उजियाले की बाट तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। हम अंधों के समान भीत टटोलते हैं, हाँ हम बिना आंख के लोगों की नाई टटोलते हैं। हम दिन दोपहर रात की नाई ठोकर खाते हैं। हृष्ट पुष्टों के बीच हम मुर्दों के समान हैं। हम सबके सब रीचों की नाई चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान च्यों च्यों करते हैं। हम न्याय की बाट तो जोते हैं पर वो कहीं नहीं, और उद्धार की बाट जोते हैं पर वो हमसे दूर ही रहता है। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे अपराध हमारे संग है और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। न्याय तो पीछे हटाया गया और धर्म दूर खड़ा रह गया है। सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश कर नहीं पाती। हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। ये देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। एक मनुष्य की दर्दनाक स्थिति को यहां पर कविता के रूप में दर्शाया गया है। यशया भविष्यद्वक्ता का ये अध्याय इब्रानी कविता है। यहां पर सब कुछ चित्र के रूप में चीजों को दर्शाया गया है, जैसा कि टेढ़े मेढ़े मोड़ वाले रास्ते अंधे व्यक्ति तरह टटोलना। अंधे व्यक्ति दिन की रोशनी में रात की तरह ठोकर खाना। वीरान कब्रिस्तान या कब्रिस्तान में रहने वाले लोग। परमेश्वर मनुष्य की घिनौनी बातों को देख रहा है। परमेश्वर मनुष्य के लालच को देखता है। वे ऐसे मन वाले हैं जो कभी ईमानदार और निष्पक्ष नहीं बनना चाहते हैं। न्याय कोई नहीं चाहता। जिसने जैसे चाहा उसने वैसा ही किया। यशाया अध्याय 59 पद 16। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। कोई नहीं था कि इसके विरुद्ध आवाज उठाए। मनुष्य जैसा है वैसा ही चल रहा था। यशाया अध्याय 59 पद 16 और 17। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। ये पद एफिसियों अध्याय 6 का स्मरण कराता है, जहां हमें कहा गया है कि परमेश्वर का कवच पहने, धार्मिकता का झिलम और उद्धार का टोप। यशाया अध्याय 59 पद 17 और 18। उसने पलटा लेने का वस्त्र धारण किया और जल जलाहट को बागे की नाई पहन लिया है। उनके कर्मों के अनुसार वो उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वो अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वो द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों अध्याय 10 पद 31, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने कहा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, रोमियो अध्याय 12 पद 19, मैं ही बदला दूंगा। परमेश्वर यहां इसी न्याय के दिन का उल्लेख करता है, यशाया अध्याय 59 पद 19, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे। यहां वो उस घटना का उल्लेख कर रहा है जो घट चुकी है, दुश्मन बाढ़ की नाई आए, कोई विनती करने वाला वहां नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो न्यायोचित बात का समर्थक था, विनती करने वाला कोई नहीं। परमेश्वर को बड़ा अचंभा हुआ, दुश्मन बाढ़ की नाई आए। यदि कोई धर्मी जीवन बिताना चाहता था तो उसे अलग कर दिया जाता था, क्योंकि जब शत्रु महानद की नाई चढ़ाई करेंगे तब क्योंकि विनती करने वाला कोई नहीं होगा, यशाया अध्याय 59 पद 19, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। परमेश्वर हस्तक्षेप करता है और काम आरंभ करता है, यशाया अध्याय 59 पद 20 और 21, और याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन यरूशलेम में एक छुड़ाने वाला या यीशु मसीह आएगा, यहोवा की यही वाणी है। और यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी न हटेंगे। सब बातों के उपरांत यहोवा अपनी प्रजा पर अपनी करुणा और अपने अनुग्रह का प्रदर्शन करेगा। पौलुस इसी विषय में कहता है, रोमियो अध्याय 11 पद 25 और 26, हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें तब तक इसराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यहां वास्तव में पौलुस यशया की इस भविष्यवाणी का संदर्भ दे रहा है, इस महिमामय दिन का, जिस दिन जब प्रभु यीशु मसीह आकर अपने वैभवशाली राज्य की स्थापना करेगा और उस वाचा का जो उसने अपनी प्रजा से बांधी है वो सदा काल की होगी। अतः सियोन का उद्धार और प्रभु का महिमाशाली दिवस। पौलुस का कहना था कि ये जो कालांतर है वो अन्य जातियों के लिए उद्धार का अवसर प्रदान किया गया है। उसके विचार में उनका पुनः रोपण कैसा होगा? यदि इसराइल का कुछ समय के लिए काटा जाना संसार के लिए ऐसी महिमा का कारण हुआ है तो वो समय कैसे होगा जब परमेश्वर अपनी प्रजा का पुनरुद्धार करेगा और उनमें अपना काम करेगा, तब उसकी महिमा पृथ्वी को कैसा भर देगी?